नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी ओम शांति।
ओम शांति।
गीता दीदी, जैसे हम देखते हैं आज के टाइम में हर एक इंसान के पास समस्या ही समस्या है, तो ऐसे ही एक हमारे पास बहन का फोन आया है। उनका जो नाम है हरप्रीत है, वो बेसिकली पंजाब से हैं। वो कह रहे हैं मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और अब उनकी तबीयत जो है ज्यादा ही खराब रहने लग गई है, जिसकी वजह से उनकी जो सास है और उनके बीच में झगड़ा रहता है। झगड़ा इसलिए रहता है, वो कह रही हैं मेरी जो ननद है, मेरी सास उनसे मुझे कंपेयर करती हैं कि मेरी बेटी इतना काम करते हैं, आप तो कुछ नहीं करते हैं। और दूसरा ये है, उनके जो हस्बैंड हैं वो भी आके बोलते हैं कि नहीं देखो मेरी बहन सारा काम करती है घर का, तुम फ्री बैठे रहते हो, तुम बोलते हो मैं बीमार हूँ, क्या तो तुम्हें पता नहीं क्या बीमारी है क्या नहीं। तो अब मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मैं उनसे डिवोर्स लूं या उनके साथ रहूं, कैसे समझाऊं, क्योंकि मेरी सास को भी समझ नहीं आ रहा है, वो मुझे नहीं समझ पा रही है या मैं उन्हें नहीं समझ पा रही हूं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, मैं क्या करूं।
हरप्रीत, आपका प्रश्न हमने सुना, इतना कोई जटिल और मुश्किलात वाली बात नहीं है। इस कलयुग में तो हरेक के शरीर में कोई ना कोई बीमारियां लगी ही हुई है, है ना। हम देखते हैं कि पहले जैसी स्वस्थता आप शरीर की नहीं रही है, तो अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण आप कामकाज नहीं कर पा रही हैं और पिछले 10 साल से आपकी शादी हुई है, तो हम ये जानना चाहेंगे पहले कि ये बीमारियां पहले से ही हैं या अभी हुई है।
दीदी, जो उन्होंने बोला है वो ये कह रही है कि मुझे आफ्टर मैरिज मीन्स थोड़ा सा हुआ है।
अच्छा,
बिफोर मैरिज में ओके थी।
तो फिर उनको पति को बताकर, सास को बताकर, माना जो भी आपका परिवार है सबके साथ बैठ के उनको बताना चाहिए कि भाई ये तकलीफ हुई है मुझे, और उसके लिए जो भी उपचार कर सकते हैं कोई अच्छे से डॉक्टर को बताया जाए और उसको ठीक किया जाए, क्योंकि कौन सी बीमारी है ये भी आपने नहीं बताया है हरप्रीत बहन ने। और आजकल तो मेडिकल फील्ड इतना एडवांस है कि हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज तो होता ही है। अच्छा, सास आपको बोलती है या पति आपको कहता है, वो बात पीछे की है, पहले तो आप खुद भी तो नहीं चाहेगी ना कि भाई मैं ऐसे बीमार रहूं। अभी तो जिंदगी की शुरुआत है और अभी से आप बीमारी का शिकार बन जाएगी, और ये समय जो है कि व्यक्ति खूब मेहनत करके, चाहे पारिवारिक कामकाज में, चाहे जीवन की और क्षमताओं के आधार से आप जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर अभी से आप बीमारी के शिकार हो जाएगी तो आप अपना भी तो विकास नहीं कर सकेगी ना। इसलिए पहले तो आप अपना मन ठीक करिए, कुछ भी करके उसका इलाज कराओ, चाहे आप अपने पति को बताओ, परिवार में बताओ या माँ बाप को बताओ, और खुद भी एक्टिव होकर के अपनी बीमारी का निदान कराओ और फिर उसका उपचार करो। तो आपको खुद भी ये अच्छा नहीं लगना चाहिए, ये आयु है जब हमें बहुत कुछ हम काम कर सकते हैं, इसलिए ऐसे ही बीमारी के नाम पर ताकत न रहे और बैठे रहना ये उचित नहीं है। और हर कोई, चाहे सास है या आपकी माँ हो उसके स्थान पर, आप खुद भी सोचो, अगर आपके माँ बाप भी, अगर आपकी भाभी घर में आके ऐसे 10 साल के अंदर ही ऐसी बीमार पड़ जाए कि माँ बाप को खुद काम करना पड़े और आपकी भाभी उपयोगी न बने, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए चाहे पति कुछ कहते हैं या सास कुछ कहती है, उसको आप माइंड नहीं करो, उसके भाव को समझो कि वो भी एक मदद चाहते हैं आपकी परिवार के, घर के कामकाज में। और ये आयु है जब आप एक्टिवली सब कुछ कर सकती है, इसलिए बुरा नहीं लगाओ पर अपनी बीमारी का इलाज कराओ और जल्दी से खुद स्वस्थ बन जाओ।
राइट दीदी, जैसे उन्होंने बोला कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, तो दीदी मेरे को लगता है ये छोटी बात है,
इसमें तलाक की तो कोई बात ही नहीं है,
क्योंकि वो बोल रही है कि उनकी सास जो है उनको टॉर्चर करती है मीन्स जिस वे में बीमारी को लेके, तो वो कह रहे हैं कि अभी मुझे बीमारी हुई, पहले तो नहीं थी, तो वो मुझे क्यों टॉर्चर कर रही है। मैंने उनको कितना समझाने की कोशिश करी, तो जैसे वो बोलती मैं वैसा ही करती हूँ, बट फिर भी मीन्स उनको लगता कि नहीं मैं उनके तरीके से वो काम नहीं कर रही हूँ।
नहीं, इसमें टॉर्चर करने की बात नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके सास है, ससुर है, ननद है, आपका पति है, सबके साथ बैठ के आप बात करो कि अब मैं इस परिवार की एक सदस्य हूँ, आज मुझे कोई बीमारी हुई है, कोई पहले से तो थी नहीं, शादी के बाद ही हुई है, अगर आप लोगों को भी कोई बीमारी होती तो क्या हम आपसे ऐसा व्यवहार करें, है ना। थोड़ा आत्मीयता से बात करो और फिर आप बताओ कि मैं इसके लिए जो इलाज है आप मेरे लिए कुछ ना कुछ करिए, मुझे ले जाइए, मैं खुद तैयार हूँ, कोई परहेज रखनी है या कुछ कोई भी दवाई लेनी है, तो खुले दिल से आपस में बात करना बहुत जरूरी है। आज हम उपयोगी नहीं बनते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाए, उसके स्थान पर व्यक्ति खुद बीमार हो तो क्या करेगा, है ना। इसलिए तलाक की बात नहीं है और मन से भारी भी ना हो हरप्रीत बहन, आप खुद दिल से सबको बिठा के बात करिए, और चाहे कोई और बुजुर्ग घर में हो, परिवार में हो, आसपास में, उनको बिठा करके भी आप बात करिए और बीमारी को ठीक करिए, और मन से आप ठान लीजिए कि मुझे इस बीमारी की स्थिति में रहना नहीं है, जल्दी से जल्दी मुझे ठीक हो जाना है और अच्छी तरह से घर की सारी जिम्मेवारियों को खुद ही सिर पर लेकर के उसको निभाना है, उस खुशी से रहिए। बाकी मन में तलाक की भी बात नहीं सोचनी है, पति के लिए भी कुछ बुरा आप नहीं सोचो और सास को भी समझने की कोशिश करो। अगर आपकी ननद बहुत काम कर रही है इसका मतलब वो बहुत अच्छी है, उनका नेचर अच्छा है, नहीं तो भाभी के आने के बाद ननदें काम नहीं करती है कई बार, पर आपकी ननद बहुत अच्छी मेहनत कर रही है मीन्स जरूर उसका नेचर अच्छा होगा, तो आप उनसे भी दिल खोल के बात करिए।
तो जो भी उनके मन में अपनी सास को लेकर शिकायत है वो खत्म कर देनी चाहिए उनको, जो मुझे लगता है।
हाँ।
और मुझे ये लगता है कि उनको अपनी सास को एक बार अपने पास बिठाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उनको मेनली उनसे क्या प्रॉब्लम है और डिस्कस करना चाहिए।
हाँ।
क्योंकि हरप्रीत बहन, मुझे लगता है कि छोटी सी बात के लिए डिवोर्स नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल,
क्योंकि ये एक नॉर्मली बात है, क्योंकि बीमारी आई है तो वो खत्म तो जरूर होगी दीदी,
और बीमारी हर किसी को आती है, आज के जमाने में बच्चे पैदा होते हैं वो भी बीमारी को लेके ही पैदा होते हैं, तो इससे खुद का मन भी भारी नहीं करो और परिवार में भी इस बात को लेकर कि कोई अपना मन भारी न करे, लेकिन बीमारी को खत्म करने का इलाज अपनाएं।
तो हरप्रीत बहन, मुझे लगता है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर तो जरूर मिल गया होगा, जैसे गीता दीदी ने आपको बड़े प्यार से समझाया, तो एक बार आप जो गीता दीदी ने आपको बताया आप उस पर सोचना, विचार करना और फिर आपको कैसा लगे आप जरूर बताना। तो दीदी, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, एक पेरेंट्स हैं, वो बोल रहे हैं हमारा जो बेटा था वो 25 साल का था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में वो मारा गया, तो जबकि हमारे बेटे की गलती नहीं थी उनके पेरेंट्स के हिसाब से, वो जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं उनके फ्रेंड की गलती थी, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक करके वो ड्राइविंग कर रहे थे और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो आज हमारा जो बेटा है वो तो मारा गया और उसका जो फ्रेंड है वो आज भी घूम रहा है, तो उन्होंने कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया क्योंकि वो लड़का पैसे वाले घर का था, तो वो घूम रहा है और हमें ये लगता है कि हमारे बेटे को मुक्ति नहीं मिली है, उसको सही फैसला नहीं मिला है, तो हमें ये सोच के बहुत दुख होता है, तो हम क्या करें।
किसका प्रश्न है ये?
ये दीदी जयपुर से एक पेरेंट्स हैं।
अच्छा अच्छा, हम तो उन्हें यही कहेंगे कि आज उसके फ्रेंड के साथ जाने से और वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ, तो ये चीज हमें पहले से सोचनी चाहिए कि हमारे बच्चे की ऐसे के साथ कैसे दोस्ती हुई, है ना? हमें अपने बच्चों को पहले ही बचाना चाहिए कि उनका संग अच्छा हो। आज जब शराब पीकर ड्राइव करने से बेटे का एक्सीडेंट हो गया और बेटे ने जान गंवा दी, तो आप सोच रहे हैं कि इसका कसूर नहीं था, दोस्त का कसूर था। पर ये चीज आपको पहले क्यों नहीं ध्यान में आई? चलो आज तो बच्चा शरीर छोड़ के चला गया, पर अगर जीवन में ऐसे शराबी के साथ उनकी दोस्ती रहती तो वो क्या अच्छी बात सीखते? उनके संग में वो बच्चा खराब ही होता ना। तो हर माँ बाप को, भले हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता जरूर दे, लेकिन हमारी नजर जरूर उस पर रहनी चाहिए कि किसके साथ उनकी दोस्ती है, किसके साथ वो उठ रहा है, बैठ रहा है, घूम रहा है, ये ध्यान जरूर देना चाहिए। और बच्चों को सावधान करना चाहिए कि देखो ये ड्रिंक कर रहा है, तो कभी भी आप उनके संग में खुद भी ये व्यसन सीखेंगे और कभी भी उनके साथ आप स्कूटर पर या जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर या कोई भी काम के लिए, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी बात ये है कि बच्चे को न्याय नहीं मिला, तो अब आप क्या चाहते हैं उनके दोस्त से? बेटा तो ऑलरेडी चला गया, अब जो उसका दोस्त वो बच गया और वो खुशी से या बिंदास होके घूम रहा है, तो अब आप उनसे क्या चाहते हैं? मतलब क्या न्याय चाहते हैं? आपका अपना बेटा तो खत्म हो ही गया, आपको उनसे पैसे चाहिए, अब न्याय क्या होगा?
पैसों का भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बेटा तो चला गया दीदी।
बेटा तो चला गया, इसलिए आप और ही उनके दोस्त के प्रति अपनी शुभ भावना रख के कभी उसको बुला के प्यार से समझाइए कि देखो मेरे बेटे ने तो तुम्हारे संग में जान गंवाई, पर तुम हमेशा तुम सलामत रहो और उसके लिए तुम ये शराब की आदत छोड़ो। आप ये समझाओ उसको और उनसे प्रण कराओ कि एक की जिंदगी तो बर्बाद हुई, अगर तुम ये व्यसन नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी जिंदगी भी सदा भय खतरे में रहेगी और कोई भी तुम्हारे साथ बैठेगा स्कूटर पर या कार में या कुछ भी, उनकी भी जिंदगी खतरे में रहेगी।
इन फ्यूचर उनको सिक्योर होना चाहिए।
हाँ, इसलिए अब जो होना था वो हो चुका, अब कोर्ट में जाके और ही हमारा पैसे समय सब बर्बाद होता है, रिश्ते भी खराब होते हैं। इससे तो अच्छा ये है कि आप अपने बेटे के दोस्त को बुलाकर उनको कहो कि तुम ये शराब की लत छोड़ो।
दीदी, माना जाता है कि हमारे यहाँ पर भी सब बोलते हैं, एक समाज में बोलते हैं कि जब जिसकी डेथ होनी है वो तो होनी होनी है, वो बोलते हैं कि सब सारे बोलते हैं कि ये एक बहाना बनता है।
हाँ।
कि वो ऐसा मारा गया, वो वैसा मारा गया, तो ये भी तो फैक्ट करता है ना।
हाँ।
क्या तो उनके बेटे की ऐसे ही लिखी होगी,
जरूर कोई हिसाब किताब होगा उनके साथ, उस स्थान के साथ, उस व्हीकल के साथ कोई हिसाब किताब होता है जो ये हो गए। इसलिए उसको जो हुआ उसे शांति से स्वीकार करके अपने बेटे को प्रभु के हवाले कर दो और बेटे के लिए भी अपना शांति का दान करो, उसके लिए भी प्रभु के याद की शक्ति का दान करो, ताकि आपका बेटा जहां भी नया जन्म ले वो सुखी रहे और वो अपने जीवन में आगे बढ़े, प्रगति करे। और उनके दोस्त के लिए भी आप शुभ भावना से प्रयास करो कि वो उस शराब की आदत से मुक्त हो जाए। बाकी ये कोर्ट केस और लड़ाई झगड़ा, इससे कुछ भी नहीं मिलता। मनी वेस्ट, रिलेशन खराब और मन में अभी भी दुख है, कोर्ट केस करेंगे तो और टेंशन भी रहेगा
और विचार भी आएंगे।
हाँ।
उल्टे सीधे जो,
इसलिए ऐसी बातों में हमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब जो कुछ हुआ उसको स्वीकार करते हुए कैसे अच्छा हो इसमें दोनों का, ये सोचना है।
तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने आपको सुना होगा, उन्हीं पेरेंट्स ने, तो वो जैसा दीदी आपने बोला वो आपको फॉलो करेंगे और उस लड़के को प्यार से आके समझाएंगे, क्योंकि उनका बेटा तो चला गया, अब उस लड़के को समझाएंगे तो ये हो सकता है किसी और की जिंदगी बच जाए। उनको प्यार से बुलाएं और समझाएं कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो। इतनी जल्दी एक्सीडेंट में जिसकी मौत होती है उसको शायद मुक्ति नहीं मिलती है, तो क्या दीदी ये सच है?
देखिए, अब जो कुछ हुआ जो वो तो हो गए, अब उस पर दुखी होते रहे या हम इमोशनल स्थिति में रहे, इसका इससे कोई बेटा वापस आना नहीं है। जीवन की जो वास्तविकता है, जो घटना घट चुकी है, हमें उसको स्वीकार तो करना ही होगा। ठीक है, हमने बेटा गवाया, हमारा बेटे के प्रति बहुत प्यार और भावना रहती है, पर अब हम मानसिक रूप से कितना भी भावुक बने, इमोशंस में आकर के अपने आप को असंतुलित करें और उनके प्रति, उसके मित्र के प्रति हम गुस्सा करें, इससे तो कुछ होना तो नहीं है ना। हमें यहाँ शांति से, धीरज से इस बात को समझना चाहिए। आज न समझने कारण और बहक जाने के कारण इमोशंस में आकर के या सेंसिटिव होकर के अपना मानसिक स्वस्थता गंवाना, इससे कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए बेटर ये है कि हमें ये हिम्मत और शक्ति अपने आप में रखनी ही पड़ेगी, समझे? और तब आप उस अपने उनके दोस्त को भी आप सीख दे सकेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप और ही हिम्मत रख के उनके दोस्त को बुला के कहो, भूल के कारण हमारा बेटा तो चला गया, अब हमारा इस बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा और कौन मदद करेगा? तो अब तुम ही हमारे बेटे हैं और तुमको ही हमारी मदद में सदा रहना है। हम और कोई कटुता संबंध में लाना नहीं चाहते हैं, पर हम आपसे सहयोग चाहते हैं। इस प्रकार अगर बड़ा दिल रखकर, हिम्मत रखकर उस दोस्त से बात करे, तो अब जो दुख के दिन हमें जो बिताने पड़ेंगे, अगर हम अफसोस में रहेंगे, अंदर में वैर भाव में रहेंगे, तो और ही हम लंबे समय तक दुखी रहेंगे। इससे तो बेटर ये है कि जो हो चुका सो हो चुका, इसको स्वीकार करते हुए रिएक्ट करने के बजाय या कोई बदले की भावना रखकर कोई गुस्सा निकालने के बजाय, और ही हमें अब इस बात को संभल लेनी चाहिए और आगे के लिए अच्छा रिश्ता कर देना चाहिए। हो सकता है उसके दोस्त का दिल पसीजे और वो कुछ और ही अपना रिटर्न करना चाहे कि हाँ, मैंने अपने दोस्त की जिंदगी ले ली, तो मैं क्यों नहीं उनके माँ बाप की सेवा करके इसका मैं हिसाब चुकाऊं। इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए और ये हिम्मत और ये शक्ति इनको रखनी होगी। बाकी जो बात आप कह रहे हैं कि कोई अचानक ऐसा शरीर छोड़ देते हैं तो उसकी गति नहीं होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अचानक से चलो एक्सीडेंट के उससे शरीर छोड़ा, ये तो हम कहते हैं कि अचानक से है, पर हो सकता है कि उसका यही नूंद हुआ हो, इस प्रकार से शरीर छोड़ना ही उनका लिखा हुआ। हम समझते हैं कि हर कोई पूरी आयु जिएगा, तो हम समझते हैं कि ये तो अचानक उसने शरीर छोड़ दिया, परंतु ऐसा नहीं है। हो सकता है इनके शरीर छोड़ने की घटना यही इस वर्ल्ड ड्रामा में नूंधी हुई हो, किसको पता है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट से या किसी भी कारण से अचानक शरीर छोड़ते हैं, माना उसकी कोई दुर्गति ही होती है या वो व्यक्ति भटकता है, आत्मा भटकती है, ऐसा नहीं है। आत्मा तो तब भटकती है जब शरीर छोड़ने के समय कोई ऐसी क्रॉनिक, कोई अति तीव्र ऐसी वासना हो या वैर हो या कोई लोभ हो या अति कोई अटैचमेंट की स्थिति हो, तो उस आत्मा की गति ऐसी होती है कि वो भटकती रहती है। परंतु यहाँ अचानक से एक्सीडेंट होने पर जो शरीर छूटता है उसमें तो कुछ सोचने की मर्जी भी नहीं रहती है। तो ऐसा अशुभ हम न सोचे और ईश्वर को याद करके अपने बेटे के प्रति शांति का दान करे, वो ही सबसे अच्छे।
जिसका जैसे एक्सीडेंट हुआ उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसकी जो आत्मा है उसी स्थान पे घूमती रहेगी।
यहाँ ही तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मदद करता है कि हम इस प्रकार की गलत मान्यताओं में दुखी ना होते रहे और क्रियाकांडों में समय धन खर्च ना करें। हाँ, आप अपने बेटे के प्रति जो धन दान करना चाहते हैं या कोई श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं, कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं, तो आप बच्चे के नाम पर करिए, वो अच्छी बात है। लेकिन अंधश्रद्धा में आकर क्रियाकांडों में पैसा समय खर्च करना और मन से दुखी होते रहना कि हमारा बेटा भटक रहा होगा, ये गलत चीज है। और ही हम उस आत्मा को दुखी होकर याद करके और ही हम उनको भटकाते हैं। जहां उसने जन्म लिया होगा वहां हम उनके मन को लगने नहीं दे रहे हैं, उनके मन को स्थिर नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको खींच रहे हैं याद करके। हम तो इस वर्ल्ड ड्रामा के हर क्षण को और हरेक के रोल को जानते नहीं है ना कि किसका रोल कैसे एंड होना है। तो हम समझते हैं कि ये तो एक्सीडेंट से शरीर छूटा, माना वो आत्मा भटक रही होगी। ऐसा नहीं, जो कुछ भी हुआ बच्चा तो गया ना, अब उस आत्मा की शांति के लिए, उसकी सदगति के लिए आप ईश्वर को याद करिए, उसके प्रति शुभ भावना दीजिए कि बेटा तू जहां भी हो तुम सुखी रहो, हमारी चिंता नहीं करना, हम भी यहाँ प्रभु की याद में रहेंगे और तुम भी जहाँ हो वहाँ सुखी रहो, भगवान तुम्हारे साथ है, हमारी शुभ भावनाएं, हमारे आशीर्वाद, हमारे दिल की दुआएं तुम्हारे साथ। ऐसे मन से वो उनको बात करे और फिर भगवान के हवाले उसको कर दे। अगर बार बार उसे याद करके दुखी होते रहे और दोस्त के प्रति मन में दुर्भावना रखे तो ये खुद का ही मन शांत नहीं रहेगा। तो बेटर ये है कि बेटे के प्रति शुभ भावना रखिए, अच्छे कर्म करिए, उसके प्रति कुछ भी दान पुण्य करना है आप करिए। ऐसे दुनिया में कई माँ बाप होंगे जिनके बच्चे एक्सीडेंट में या कोई कारण से चले गए हों, तो आप कोई समाज सेवा का अच्छा कार्य करिए ताकि ऐसे माँ बाप को हिम्मत मिले, शक्ति मिले। और बेटे के दोस्त को भी बुला करके आप उनको सीख दें कि भई तुम ये शराब छोड़ो और अब तुम ही हमारे बेटे हो और हमारे हर कार्य में तुम्हें ही मदद करनी। तो और ही रिश्ते को ठीक कर लीजिए और उसे भी अपना बोझ हल्का करने के लिए सेवा करने का मौका दीजिए।
राइट दीदी, जैसे अभी इन पेरेंट्स को आंसर भी मिल गया होगा, जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में जन्म लेती है, तो उसमें जाके अगर हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो वहां पर उसको भी परेशानी होगी। जैसे आपने अभी जस्ट
उनके वाइब्रेशंस दुख के ही मिलेंगे। आप खुद भी विवेक से अपना जीवन जिए और बच्चे के प्रति अपनी क्षमता अनुसार, अच्छा वो कुछ पढ़ रहा होगा कोई स्कूल में कॉलेज में, तो वहां कोई उसकी याद में कोई अच्छी सा दान पुण्य आप करिए ताकि बच्चे पढ़े लिखे और या तो कोई जो भी व्यसनी लोग हैं उनके व्यसनों को छुड़ाने की कोई अच्छी प्रवृत्ति करिए, या कईयों के बेटे गुम हो गए हैं, शरीर छोड़ दिए हैं, एक्सीडेंट में चले गए हैं, ऐसे माता पिता जो निराधार हो गए हैं उनको कुछ मदद के लिए करें। हमें तो अपना धन का सदुपयोग करना है ना बच्चे के पीछे, तो उस बच्चे को भी उसका पुण्य पहुंचेगा। हम सही तरीके से समाज सेवा के रूप में उस पैसे को खर्च कर बच्चे के पीछे पुण्य का दान कर सकते हैं। अब ये जरूरी है।
दीदी आपने बहुत अच्छी बात की, जैसे पेरेंट्स इतना इतना पैसा वेस्ट करते हैं।
बच्चे के निमित्त कुछ भी धन दान करना है, पुण्य कमाना है, तो अच्छे कर्म करके उसमें दे।
दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें अपना कीमती अमूल्य समय हमें दिया। मुझे लगता है जैसे हरप्रीत को, पेरेंट्स को, सभी को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों, इसी टाइम।
ब्रह्मा कुमारी।